Going back to 9 verse And March, from what explains March name, he did not want to accept the material body, which could cause a bondage because he was in a movie.
बाराण जी भी नहीं चाहते थे कि उन्हें भौतिक देह द्वारा मिले क्योंकि वो भगवान के भक्त थे.
He wanted a body which he could render devotional service to the Lord.
वो एक शरीर चाहते थे जिससे वो भगवान की सेवा कर सके.
My Lord, if you want me to take birth and accept a material body again, kindly do me this favor. Allow me to take birth in the home of your servant, your devotee. I do not mind being born there even as a significant future, but like I said.
कि अगर आप चाहते हैं कि मैं शरीर धारण करूं तो मुझे किसी भक्त के घर में जन्म दे, चाहे कोई कीड़ा ही कोई छोटा कीड़ा मकोड़ा ही क्यों ना हो, भक्त के घर में जन्म दे.
Let's go back and see what the little bit of history here was leading up to the current verse.
जब पीछे करके देखते हैं कि पीछे की हिस्ट्री क्या है जो इस वर्ष तक हमें लेके आई है.
Going back to the first verse of the chapter, because understanding the context here is very important.
हम पहले वर्ष में जा रहे हैं क्योंकि कंटेक्स्ट को समझना बहुत जरूरी है हमें.
Beginning with the first verse.
वर्ष नंबर फर्स्ट.
Shri Sukadeva Goswami said, Sukadeva Goswami said, after beginning sacrifices, Maharaj Nimi, the son of Ishvaku. So this is how we are in the subject. Now we're on the subject of Nimi because we're still discussing the dynasty of the sun god.
यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा यज्ञों का शुभ आरंभ करने के बाद इक्ष्वाकु पुत्र महाराज नेमि ने, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हम इक्ष्वाकु पुत्र और सन गॉड की जो डायनेस्टी है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं.
So it appears that Maharaj Nimi is apparently the grandson of Surya.
तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि महाराज नेमि जो है ग्रैंड सन यानी कि पोते हैं सूर्य देव के.
इक्ष्वाकु इज द सन ऑफ द सन गॉड.
इक्ष्वाकु जो है वो सन गॉड सूर्य देव के पुत्र है.
भगवान कृष्ण मेंशंस इट आई स्पोक दिस भगवान गीता टू द सन गॉड एंड सन गॉड स्पोक टू दिस सन इक्ष्वाकु दिस इज सन इक्ष्वाकु. सो देयर वी कैन सी दैट डायनेस्टी कनेक्शन ऑफ महाभारत दे आर नॉट मंडेन पर्सनालिटीज.
तो हम भगवद गीता में भी देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैंने भी जो दुनिया में ध्यान है कि मैंने सूर्य देव को दिया और सूर्य देव ने अपने पुत्र को दिया. और आप देखते हैं कि जो ध्यान है इसे साधारण मनुष्य को ही नहीं भगवान के भक्तों को बार भक्तों को दिया गया जो राजस्व के भक्तों से खड़ी हुई है.
So Maharaj Nimi requested the great sage Vasishtha to take the post of chief priest at Ajna.
तो महाराज नेमि ने वशिष्ठ मुनि को उनसे अनुरोध किया कि वो यज्ञ में उनके पुरोहित बने.
वशिष्ठ replied, my dear Maharaj Nimi, I have already accepted the same post and the sacrifice for them by Lord Indra.
वशिष्ठ मुनि ने कहा कि हे महाराज मैं इंद्र के यज्ञ के लिए ऑलरेडी ही जा रहा हूं.
सेकंड वर्स. Vasishtha said, I shall return here after finishing the judgment of Indra. Kindly wait for me until then.
मैं इंद्र का यज्ञ पूरा करके यहां वापस आऊंगा फिर जब तब तक मेरी प्रतीक्षा करें.
Maharaj Nimi remained silent and Vasishtha began to perform the sacrifice for Indra.
Maharaj Nimi चुप हो गए और वशिष्ठ इंद्र का यज्ञ संपन्न करने में लग गए. तो यहाँ पर मेन स्टोरी सुना जाता है लेकिन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है.
If you want to read stories, don't read some rubbish, cheap, garbage novel.
अगर आप कोई कहानियां सुनना चाहते हैं तो कोई सस्ती और मनोधारणा वाली कहानियां ना सुनते
हैं.
ये श्रीमद भागवत का अध्ययन कीजिए.
It was making a point like this when I was in Calcutta at a Bhakti Riksha group, 800 Bhakti Riksha group members. And spontaneously, I got some inspiration to sell sets of bhagavatams in a city and congregation where they don't buy books.
तभी मुझे अचानक से इंस्पिरेशन मिली कि मैं भाव श्रीमद भागवत के टेक्स को डिस्ट्रीब्यूट करूं, उनको वितरण करूं.
So I said, why do you read cheap junky novels?
तो मैंने उन्हें कहा कि आपको सस्ते बेकार के गंदे नॉवेल्स क्यों पढ़ने हैं?
Why not read Srimad Bhagavatam's full, very fascinating stories?
आप श्रीमद भागवत क्यों नहीं पढ़ते जिसके बहुत सुंदर कहानी है, बहुत सुंदर कहानी है.
You find this story interesting?
Yeah, आपको ये कहानी इंटरेस्टिंग लग रही
है?
Good, good. Then you can bring it.
अच्छा है, तो आपको इसमें भाव में आने पड़ सकते.
So Vishisha said, wait for a while, and Maharaj Nimi remained silent. He didn't say yes, Guru Maharaj. He just said, let's say yes. The fact that he remained silent is quite significant.
हम यहाँ पे देखते हैं कि महाराज मेरी जो है चुप रहे और ये चुप रहना बड़ा अजीब सा है. और वशिष्ठ जो है लॉर्ड भगवान इंद्र के जैसे संपर्क करने में लग
गए. महर्षि ने being a self-realized soul, Marcus was, he was not a Kinnasadakari, Marya Madakari. But he is Mahabharata. This is very important. Mahabharata is the whole emphasis.
So Maharaj Nidhi jo hai, Swaroop Siddh Jeev the. Hame yahan pe dekhna hai ki Maharaj Nidhi Kanishtha Adhikari ya Madhya Adhikari nahi hai. Wo Swaroop Siddh Jeev hai.
And they know why they don't make the six.
Aur kya kisi ko pata hai ki wo koi galti kyun nahi karte?
No clue.
Yes, Prabhu.
Yes,
Prabhu.
Yes, Prabhu. Yes.
Because they are guided by Krishna.
Yes, they are directed by Krishna. Hare Krishna. Each and every word coming from the mouth of the Mahavakra is dictated by Krishna.
स्वरूप से जीव है उनका जो हर एक शब्द है हर एक जो उनका एक्शन है जो उनका कार्य है वो स्वयं श्री कृष्ण के निर्धारित होता है कि वो क्या कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं उनके निर्देशन साल होता है.
That's why Srila Prabhupada said, I did not write these books, Krishna wrote them. That's why, understand. You say, well, I don't know your Prabhupada. Well, listen. Listen. By hearing, by Shravanam, you will come to understand Prabhupada, and you will develop your love and attachment in your heart when you understand. Oh my God, that's amazing. The Krishna wrote the books and Prabhupada was, in one sense, the scribe, just like Ganesh.
तो श्रीला प्रभुपाद कहा करते थे कि ये सारे ग्रंथ हैं ये मैंने नहीं लिखे ये श्री कृष्ण के द्वारा श्री कृष्ण ने मेरे द्वारा लिखवाए हैं तो आप सबको इन ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए आप इनका अध्ययन करने पर श्रीला प्रभुपाद को भी समझ पाएंगे.
Point is that Maharaj Nimi did not make a mistake.
Point यहाँ पे ये है कि महाराज नीमि ने यहाँ पे कोई गलती नहीं करी.
So Shukadev Goswami continues. This is the third verse. Maharaj Nimi, being a self-realized soul, considered this as like his flickering. No flickering, double flickering, no flickering. Like a hands are blowing and you put up like you have a fan. How it goes.
तो महाराज नीमि स्वरूप सिद्ध जीव थे अतः उन्होंने सोचा कि यह जीवन क्षणिक है एकदम
waiting a long time for Vashistha, he began to perform the sacrifice with other priests.
अतः दीर्घ रात तक वशिष्ठ की प्रतीक्षा ना करके उन्होंने अन्य पुरोहितों से यज्ञ संपन्न कराना शुरू कर दिया.
So Vashistha had told him to wait, but he's actually disobeying. So this is he's disobeying. Guru, because actually in those days, every Brahmana was seen as Guru, not just Diksha, not just Dikshas. superstition, but in the Vedic culture, every Brahmana was seen as Guru.
और अब देखते हैं कि प्राचीन समय में जब ब्राह्मण होते थे उन्हें गुरु के समान समझा जाता था, जब ऐसे ही किसी से विचार गुरु गुरु है सारे ब्राह्मण वर्ग को गुरु के समान देखा जाता था।
It was a very serious situation because Maharishi Nimi is a disciple of Vasishtha.
ये बहुत गंभीर स्थिति है क्योंकि महाराज निमि जो है वशिष्ठ के शिष्य थे।
But he didn't want to wait, so he's actually disobeying his Guru Maharaj. This is heavy duty. This is one of those don't throw this at home stories.
लेकिन वो वेट नहीं करना चाहते थे, तो उन्होंने अपने गुरु महाराज की आज्ञा का अवहेलना की, तो ये बहुत ही एक हैवी ड्यूटी चीज है, गंभीर चीज है, तो इसको घर पे करने का प्रयास मत कीजिएगा।
So this is just like the other example of this. Of disobeying Guru for the right reason is yes, Bali Maharaj. Thank you very much.
हम देखते हैं ऐसा एक और उदाहरण है जब गुरु की अवहेलना करने के लिए सही चीज के लिए, और वो उदाहरण है बली महाराज का।
That's another don't try this at home story.
ये भी एक ऐसी स्टोरी है जो आपको घर पे खुद नहीं करनी चाहिए।
Of course, the emphasis on Vasishtha is much more spiritually advanced than the Guru of
हम यहाँ पे देखते हैं कि जो वशिष्ठ मुनि है वो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअली आगे है, एडवांस है जो बलि महाराज के गुरु थे शुक्राचार्य से।
शुक्राचार्य
तो भगवान के भक्त में भी प्रकट नहीं करे जाते। वो भगवान विष्णु के बारे में सब जानते हैं लेकिन उनके हृदय में भगवान विष्णु के लिए भक्ति नहीं है।
So here we see that we can't say a thing about Vasishtha is a great soul.
लेकिन हम यहाँ पे वशिष्ठ के बारे में कह सकते हैं वशिष्ठ तो एक बहुत महान जीवात्मा है।
He's not ordinary, not ordinary yogi, not ordinary mystic.
वो एक कोई साधारण योगी नहीं है, साधारण शक्ति वाले कोई मनुष्य नहीं है।
So the fourth verse continues, after completing the sacrificial performance for King Indra, the spiritual master Vasishtha returned and found that his disciple Maharishi Nimi had disobeyed his instructions.
The fourth verse में हिंदु का यज्ञ संपन्न करने के बाद गुरु वशिष्ठ वापस आए तो उन्होंने देखा कि उनके शिष्य महाराज नीमि ने उनके आदेशों का उल्लंघन कर दिया है।
Thus, Vasishtha cursed him, saying, may the material body of Nimi, who considers himself learned, immediately fall.
उन्होंने नीमि को श्राप दिया, अपने को पंडित मानने वाले नीमि का भौतिक शरीर तुरंत ही नष्ट हो जाए।
Now, the fifth verse, that's even heavier.
तब देखेंगे पांचवा जो श्लोक है वो और ज्यादा गंभीर है।
Anybody remember?
क्या किसी को याद है कि ये पांचवा श्लोक क्या है?
Yes, महाराज
ने महाराज ने उत्तर दिया कि जो महाराज नहीं है वो वशिष्ठ मुनि को वापस श्राप दे देगा।
Counter-cursed his spiritual master.
पांचवा श्लोक महाराज जी के द्वारा किसी प्रकार का अपराध न किए जाने पर व्यक्ति गुरु द्वारा शापित होने पर उन्होंने भी बदले में श्राप दिया.
For the sake of getting visitors, now he is insulting his guru, but it's with a true statement. Truth, using truth to insult his guru, which is also one of his.
So वो सच बोल रहे हैं और सच बोलने से उनकी गुरु की वो बेइज्जती कर रहे हैं, उनकी इज्जत कर रहे हैं, तो ये भी अपने घर पे प्रयास मत कीजिए ऐसा करने का.
For the sake of getting contributions from the king of heaven, Maharaj Nimi said, you have lost your religious intelligence. Therefore, I pronounce this curse. Your body will also fall.
Maharaj Nimi ne kaha, swarg ke raja indra se ke paane ke liye mein aapne apni dharmik buddhi kho di hai. Ate mera chaap hai ki aapka bhi sharir paas ho jaye.
So, two very great souls cursing each other. This is
तो दो महान भक्त दो महान जीवात्माएं एक दूसरे को श्राप दे रही हैं, तो एक बहुत बड़ा डिजास्टर है.
So the Rupa here probably points out that when one is infected by contaminated activities, its power, material, or spiritual reduces. So the point is that the Shista is off. That's the point.
तो रुपा यहाँ पे तात्पर्य में लिखते हैं, जब कोई व्यक्ति दूषित कर्मों के संपर्क में आता है तो उसकी शक्ति चाहे भौतिक हो या आध्यात्मिक घट जाती है.
So Prabhupada points out that although his sister was a spiritual master of Maharaj Nimi, because of his greed, he became formal.
तो पर आगे लिखते हैं, यद्यपि वशिष्ठ महाराज नीमी के गुरु थे, किंतु लोभ के कारण उनका पतन हुआ.
So from this book we can see that Maharaj Nimi was speaking the truth. It was not just
हम यहाँ पे देखते हैं कि महाराज जिनकी जो है सच बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो अपराध कर रहे हैं, लेकिन सच बोलते वो चीजों को बता रहे हैं.
Because he said, for the sake of getting contributions to the kingdom of heaven, you lost your religious intelligence. In other words, you should have seen that my judgment was more important than King Indra's judgment. This is basically what Maharaj Nimi is saying.
तो महाराज जी कहते हैं, स्वर्ग के राजा इंद्र से भेंट प्राप्त करने के नियमित आपने अपनी धार्मिक बुद्धि खो दी है, तो उन्हें सोचना चाहिएगा उनके लिए ये जो महाराज जी का यज्ञ है ये ज्यादा जरूरी था महाराज इंद्र के यज्ञ से.
We see this temptation for like Ranyakasipu, Ranyakasipu, gold and software.
तो हम देखते हैं ऐसी प्रवृत्ति थी रण्यकशिपु के लिए सोने के प्रति और सॉफ्ट बेड के प्रति.
So, if they're not after something, in this case, we see that Vashistha was after money. That's why Prabhupada says, money is money.
तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो वशिष्ठ मुनि थे वो पैसों के पीछे थे और जैसे कि प्रहलाद महाराज कहते हैं money is money.
Yes. So even great personalities like Vashistha fall prey to the temptation of books.
जहां तक कि बड़े मुनि जैसे वशिष्ठ मुनि हैं वो भी पैसों के लालच में पैसे के लोभ में पड़ जाते हैं फंस जाते हैं.
But not pieces of paper, worthless pieces of paper.
देखिए उनके जो पैसे हैं वो ऐसे कागज में टुकड़े नहीं हैं.
Diamonds, gold, rubies, sapphires, all precious gems by our 2018 standard worth millions of crores. That's what Vashistha was after, if I understand. That's why Maharaj Nimi dared to curse him, because he was after millions of crores of precious gems, instead of seeing the importance of Maharaj Nimi's Vishnu's happiness.
Diamond, rubies, और ये जो बहुत अन्य अन्य प्रकार के जो बहुत वैल्यूएबल ये जो ये जोरात होते हैं, तो महाराज जी जो है इनके पीछे थे. 2018 के स्टैंडर्ड के हिसाब से तो ये करोड़ों करोड़ों रुपए हैं. तो देखते हैं यहाँ पे जो वशिष्ठ मुनि ऐसे तारा से करोड़ों करोड़ों रुपए के पीछे थे.
So, six verse, more magic. Are you ready?
तो छठे वर्ष के अंदर बहुत बहुत बड़ा मैजिक है, क्या तैयार है?
So after cursing Vashishtha, Maharaj Nimi, who was expert in the science of spiritual knowledge, he got his body.
यह कहकर अध्यात्म में पटु महाराज नीमि ने अपना शरीर छोड़ दिया.
Vashishtha, the great grandfather, gave up his body also.
पर पितामह वशिष्ठ ने भी अपना शरीर त्याग दिया.
But through the semen discharged by nature and Varuna, when they saw Arasi, he was born again.
किंतु मित्र तथा वरुण के वीर्य से उर्वशी के गर्भ से उन्होंने पुनः जन्म लिया.
Prabhupada explains that when Mitra and Varuna chanced to meet Arasi, the most beautiful prostitute of the heavenly kingdom, they became lusty, and because they were great saints, they tried to control their lust, but they could not do so unless they discharged semen.
मित्र तथा वरुण की भेंट स्वर्ग लोक की परम सुंदर अप्सरा उर्वशी से हुई, तो वे दोनों कामासक्त हो उठे. उन्हीं होने के कारण उन्होंने भरसक अपनी काम वासना को रोकना चाहा, किंतु वे ऐसा नहीं कर पाए. अतएव उन्होंने वीर्य संकलित हो गया, अतएव उनका वीर्य संकलित हो गया, स्खलित हो गया. यह वीर्य एक जलपात्र में रखा गया और इसी से वशिष्ठ.
This semen was kept carefully at a water pot and Vashishtha was born from it.
यह वीर्य जलपात्र में रखा गया और इसी से वशिष्ठ उत्पन्न हुए.
Do they know this modern science? Do they know how to do this?
क्या मॉडर्न साइंस में ये जानना आता है?
No. No. What? This is the greatest civilization in the history of the planet. You mean you know how to do it? You say that this is a science superior to modern science? No, I couldn't believe it. This is the greatest civilization ever in the history of the planet.
ये कैसे? आपकी जो सभ्यता है, आप तो कहते हैं कि आधुनिक सभ्यता है सबसे बड़ी है, सबसे अच्छी है. तो ये आधुनिक सभ्यता क्या वो नहीं कर सकती तो पुरानी सभ्यता कर पाती? नहीं कर सकती. नहीं.
This, I mean, they would love to know how to do these things. You know, let's face it, modern artificial insemination can't compare with this. This is a superior science.
So, ये जो साइंस है, जो विज्ञान है, जो शास्त्र में दिया है, ज्यादा सुपीरियर, ज्यादा अच्छा विज्ञान है जो आज का जो मॉडर्न साइंस है.
So, the seventh verse says, during the performance of the jagna, the body relinquished by Maharaj Nimi was preserved in a frequent substances, and at the end of the Sattva Yuga, the great saints and Brahmanas made the following request to all the demigods assembled there.
Seventh Shlok. यज्ञ संपन्न करते समय महाराज नीमि द्वारा जब अपने शरीर को सुगंधित वस्तुओं तथा सुरक्षित रखा गया, वस्तुओं द्वारा सुरक्षित रखा गया, और सत्र योग सत सत्र यज्ञ के अंत में मुनियों तथा ब्राह्मणों ने वहां एकत्रित सारे देवताओं से निम्नलिखित
प्रार्थना की.
यहाँ पे हम देखते हैं दो महान जीवात्माएं महाराज नीमि और वशिष्ठ मुनि, दोनों ने अपना शरीर त्याग दिया. तो जो ऋषि गण थे उन्होंने देवताओं से प्रार्थना की.
So they could, in the devas say, if you are satisfied in the eighth verse, if you are satisfied with this sacrifice, and if you are actually able to do so, kindly bring Maharaj Nimi back to life.
तो उन्होंने कहा यदि आप इस यज्ञ से संतुष्ट हैं और यदि वास्तव में आप ऐसा करने में समर्थ हैं तो कृपया इस संसार में महाराज नीमि को फिर से जीवित कर दें. इसी शरीर में.
This is a request by the sages.
ये मुनियों की प्रार्थना है.
They're requesting this miracle from the demigods.
ये जो मुनिगण है वो देवताओं से प्रार्थना कर रहे हैं.
The demigods said yes to the request by the sages, but Marge and Nimage said, in other words, he didn't actually die here, he's a soul to kill. And he's a mystic, I thought
about it. So, Marge and
Nimage responded to this drama of going on by saying, please do not imprisonate a demon with your body. In other words, being self-realized, he understood what his body is, nothing but a
महाराज जी ने इस ब्राह्मण ने एक अलग अनुरोध निभाया और बोला कि कहते हो मुझे दोबारा भौतिक शरीर नहीं दीजिए. जो सेल्फ रियलाइज होते हैं, जो स्वरूप से होते हैं, वो नहीं चाहते कि उन्हें दोबारा अपने शरीर के अंदर बांधा जाए.
तो महाराज निमिष बॉडी हैड बीन प्रिजर्व्ड इन वेरियस बॉम्ब्स VALMS बॉम्ब्स मींस हर्ब्स एंड ऑइंटमेंट्स एंड सो फॉर ऑयल.
तो महाराज श्रीमी के शरीर को अलग अलग तेलों के अंदर उन्हें सुरक्षित रखा गया.
So there so powerful such deeds of bringing life back to dead body, the science is not known to every user. Can anybody say that they teach you in a university? Scientists are all scientists.
So,
teach you how to bring a dead body back to life in a university?
महाराज पूछ रहे जैसे कि वहां पर जो इसी घर से मुनि कर्तव्य उन्होंने महाराज जिमी के शरीर को तेलों के अंदर उसको प्रिजर्व करके संभाल के रखा. महाराज पूछ रहे क्या आज की यूनिवर्सिटियों में ये सिखाया जाता है कि कैसे ऐसे शरीर को हम सुरक्षित रख के उसको वापस जिंदा कर सकते हैं? कैसे सिखाया जाता है?
Yes, the science is not known. They love to know the science. I mean, Walt Disney, you know, the famous Walt Disney, movie producer. Walt Disney.
So, जैसे महाराज ने कहा है सही बात है कि ऐसा नहीं बताया जाता, लेकिन जो विज्ञानी ऐसा जानना जरूर चाहते हैं, करना जरूर चाहते हैं.
He believed in a so-called science called cryonics.
So Walt Disney,
you don't know who Walt Disney is? Half your life is gone. Everybody know who Walt Disney is? Movie producer in the 1960s in San
Jose. जो Walt Disney था, उसने भी अपने शरीर को ऐसे ही रखवाया था कि उसके शरीर को प्रिजर्व करके रखा जाए ताकि उसे बाद में जीवित करा जाए. अगर हो सकता है बाद में कभी जीवित करना ऐसा पॉसिबल हो, संभव हो, ताकि विज्ञानी उसको दोबारा जीवित कर सके.
But of course he had a clear body, so of course he died of some disease, naturally.
क्योंकि उनका जो शरीर था वो बहुत ही शरीर था, तो उनको बीमारी ज्ञानी के कारण उन्होंने शरीर बाद में जा रहा.
All his money and fame could he save him.
सारा जो उनका पैसा था और जो उनका नाम था उन्होंने बचा नहीं पाया.
So he gave the order and set up before he died in his will said that his body should be frozen an extremely expensive machinery, giant tanks and all that, that removed the blood from his body and kept some kind of fluid going in his body instead of blood or whatever, that something similar to that cryonics is called, in an attempt to keep the body from actually dying.
So, उन्होंने अपने बिल के अंदर विरासत बिल के अंदर ऐसा लिखा कि जो उनका शरीर है मरने के बाद उसे एक मशीन के अंदर डाल के रखा जाए, उनके शरीर के अंदर खून की जगह कोई और पदार्थ उनके शरीर में बांधे और उनके शरीर को रखा जाए, संभाल के रखा जाए.
So Disney's family was forced to spend, because of his will, Disney's family was forced to spend tens of millions or more US dollars to keep all this machinery going, keep his body frozen on his hope that science will be better in the future and they can bring his body back to life. Secure.
So Walt Disney ki parivar ko bahut sare 10 crore ya usse bhi zyada paise kharch karne pad rahe the us machinery ko chalane ke liye, usko rakhne ke liye. इस आशा में कि कभी साइंटिस्ट जो है ऐसा विज्ञान प्राप्त करेंगे, ऐसी साइंस होगी उनके पास, ऐसे दृढ़ शरीर को वो दोबारा जीवित कर सके, स्वतः वॉल्ट डिज्नी को दोबारा जीवित कर पाए.
दिस क्रायोनिक्स racket started when once they successfully froze a dog, it successfully froze a live dog.
और ये साथ हुआ था इसका विज्ञान उन्होंने समय का साथ दिया था जब उन्होंने एक बार एक कुत्ते को जिंदा कुत्ते को पूरा जमा किया था
and then managed to bring him back to life again.
और उसके बाद उसे दोबारा जीवित कर दिया था
But this he had already died of disease.
लेकिन तो बहुत निश्चित थे वो तो व्याधि से मरे थे एक बीमारी से मरे थे उनके पास उस बीमारी का कोई इलाज नहीं था
So after decades of wasting tens of millions of dollars or more,
तो 10-20 साल के बाद और हजारों करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद
His family decided they had enough of wasting money on this. They decided they had enough of this nonsense. Wasting the family dynasty's money, you know, on some myth.
बहुत जिसने की फैमिली ने अब निश्चित कर दिया अब बहुत हो गया ये बेकार के पैसे खर्च करना ऐसे कुछ होने वाला है नहीं पता नहीं कब की आ जाए कब होगा
So they had the bucks, so they hired some scientists and some doctors to give sworn testimony that this cryonics was bogus, not real science. They had the bucks, it's easy for them to, you know, pay some scientists and some doctors to say that there was no truth in it, therefore they could unplug him, That was the whole point, to unplug his frozen body so they would have to pay for his, he was costing hundreds of thousands of dollars a year to keep his body frozen in a special
तो वॉल्ट डिज्नी की फैमिली ने काफी सारे डॉक्टरों और वैज्ञानिक को अपने पास गए उन्होंने काफी सारे पैसे दिए और उनसे ये प्रूफ करवाया कि एक तो कुत्ते को जैसे उन्होंने जिंदा किया था जिंदे कुत्ते को जमाने के बाद ऐसा ये सच नहीं है और ये जो वॉल्ट डिज्नी को कभी दोबारा जिंदा नहीं किया जाता इसको पूरा प्रूफ कराया ताकि वो ये जो मशीनरी चल रही थी जिसके हजारों करोड़ रुपये वो खर्च कर रहे थे उसको बंद करा सके
So Maharaj Vrindavi probably explains, Maharaj Vrindavi did not want to accept the material body again, which would be a cause of bondage because he was a devotee. He wanted the body which he could render the most service to the Lord uninterrupted.
So Prabhupada yahan pe likhte hain ki Maharaj Vrindavi jo hai bhautik sharir mein nahi karna chahte the kyunki vah bandhan ka karan manta aur bhakt hone ke karan ve aisa sharir chahte the jisko upyog bhagwan ki bhakti karne mein kiya ja sake
So in verse 10 he says, I do not wish to accept the material body, for such a body is the source of all distress, meditation, and fear.
मैं भौतिक शरीर पाने का इच्छुक नहीं हूँ क्योंकि ऐसा शरीर विश्व भर में सर्वत्र दुख शोक तथा भय का कारण होता है
Everywhere in the universe, just as it is for a fish in the water, which lives always in anxiety because of fear of death.
जिस तरह कि जल में रहने वाली मछली मृत्यु के भय से सदैव चिंता ग्रस्त रहती है
Here should be for some to make some interesting insight into the mentality of the fish. We don't know these things, but we hear from the great soul Sri Goswami that fish live in fear of being swallowed by some bigger fish. This is the whole point.
तो सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे जो मछली की मानसिकता है वो बता रहे हैं कि कैसे जो मछली है जो पानी में रहती है हमेशा भय में रहती है कि कब उसे बड़ी मछली खा ले
इवन एट द पास्ट टाइम ऑफ मत्स्य अवतार
यहाँ तक कि मत्स्य अवतार में भी हमें देखते
हैं इवन जस्ट अ लिटिल फिश मेबी मेबी ही वाज लेट्स से फॉर सेक डिस्कशन लेट्स से ही वाज ओनली अबाउट एन इंच लॉन्ग सो 4 centimeters.
जैसे हम मत्स्य अवतार में देखते हैं कि जो मत्स्य अवतार में जो पहले मछली थी भगवान थे वो बहुत छोटे थे करीब एक इंच के बराबर थे
The king was just scooping up some sacred water from the sacred river for his puja.
जो राजा थे वो अपनी पूजा के लिए जल में से छोटी भर जल ले रहे थे
So, by accident, that's a joke. By accident, Actually, the real explanation is by the will of the Lord.
तो मार्ग कहते हैं कि ये जोक है कि by accident कि उन्होंने ऐसा करा होगा क्योंकि हर चीज जो है भगवान के निर्देश अनुसार होती है
He scooped up this little, very small fish in his logo.
तो क्या हुआ कि जैसे उन्होंने लोटे में पानी भरा तो उस लोटे के अंदर वो छोटी मछली आ गई।
He was about to pour the fish back into the river.
तो वो उस पानी के साथ उस मछली को नदी में दोबारा डाल रहे थे।
The little fish said,
तो छोटी मछली ने उसे कहा,
You can't put me back in the water. I'm a little fish and some big fish will eat me. It's very dangerous. So don't put me back in the water.
आप मुझे दोबारा नदी में नहीं डाल सकते। मैं बहुत छोटी सी मछली हूँ। बहुत बड़ी बड़ी मछलियां मुझे खा जाएंगी। ये नदी का पानी बहुत मुझे दुखदायी है, बहुत डेंजरस खतरनाक लग रहा है। आप फिर मुझे भर डाले।
But the king was covered by Yogamaya, so he didn't strike him as peculiar yet. And there was a talking fish. Because he was covered by Yogamaya, he didn't understand that it was a talking fish.
क्योंकि जो king थे, जलालत थे, वो योगमाया से अचानक थे, तो उन्होंने नहीं सोचा कि ऐसे एक छोटी मछली बोल रही होगी, और उन्होंने उस मछली को दोबारा पानी में डाल दिया।
So, again, the 11th verse, the demigods being requested by sages said, let Mars Nimi live without a material body, without a material body. Listen carefully.
So, devdaon ne kaha ki cheek hai ki maharaj nimi bina bhautik sharir se vilin hokar rahe.
Let him live in a spiritual body as a personal associate of the Supreme Personality of Godhead.
वे अध्यात्मिक शरीर से भगवान के नीति पार्षद बन कर रहे
And according to his desire, let him be manifest or unmanifest to come materially in body of people.
और वे अपनी इच्छा अनुसार जब चाहे सामान्य देहधारी लोगों को दिखे या ना दिखे।
So Sri Prabhupada explains, the demigods wanted Maharaj Nimi to come to life, but Maharaj Nimi did not want to accept another material body.
तो प्रभात आचार्य में बताते हैं कि देवता चाहते थे कि महाराज नेमी जीवित हो उठे किंतु वे दूसरा भौतिक शरीर धारण करना नहीं चाह रहे थे।
Under the circumstances, the demigods, having been requested by the saintly persons, gave him the benediction that he would be able to stay in his spiritual body.
ऐसी दशा में ऋषियों की प्रार्थना पर देवताओं ने जीवी को वर दिया कि वे अपनी आध्यात्मिक शरीर में रह सकते
हैं। कई
लोगों को लगता है, जो कम होने वाले होते हैं, कि स्पिरिचुअल बॉडी का मतलब आध्यात्मिक शरीर का मतलब है भूत प्रेत का शरीर।
So the demigods gave King Nimi the benediction that he would be able to stay in a purely spiritual body, free from all gross and subtle material contamination.
So जब देवताओं ने महाराज नीमी को वर दिया कि वो अपने आध्यात्मिक शरीर में रह सकते हैं, तो ये सटल बॉडी थी, भूत प्रेतों वाली बॉडी नहीं थी।
There are multiple examples of great devotees ascending to the spiritual world in the same body.
ऐसे हम बहुत से उदाहरण देखते हैं जिसमें जो महान जो जीवात्माएं हैं वो आध्यात्मिक जगत में जाती हैं उसी शरीर के अंदर।
In other words, having a so-called material body in the material world, but being able to ascend to the spiritual body into the spiritual sky in the same body. There's several explanations of this.
तो देखते हैं कि जैसे भौतिक संसार में भौतिक शरीर होती है, वैसे ही वो आध्यात्मिक जगत में जा पाते थे अध्यात्म शरीर के
साथ। The Supreme Personality of Godhead can be seen or unseen according to his own personal desire. Similarly, the devotee being even more clear can be seen or not as he chooses.
भगवान अपनी दिव्य इच्छा अनुसार दृश्य या अदृश्य रहते हैं। इसी प्रकार भक्त जीवन मुक्त होकर अपनी इच्छा अनुसार दृश्य या अदृश्य रह सकता है।
Really important. Try to catch the secret meaning of Prabhupada's statement. Raja Gudhi, Raja Gudhi, try to catch it. At the present time, we cannot see Srila Prabhupada's so called material body.
हम अभी के समय में श्री प्रभुपाद का शरीर को नहीं देख पाते.
But his jivan mukta means Sivanath Singh according to his desire. So he left behind Fancy the Parallel of this pastime. He left behind his so-called material body, but he is still alive in the level of Vrindavan and doing just fine. And so we can't see his spiritual body, we're not fit. One day we will see his spiritual body.
सुखमानी अभ्यास के जैसे इस प्रसंग में है वैसे ही प्रभुपाद की इतना में हुई कि प्रभुपाद ने भौतिक शरीर को छोड़ दिया लेकिन अपने आध्यात्मिक शरीर में अभी भी लोग वृंदावन में सेवा कर रहे हैं. और जब हम हमारे जो ऐसी क्वालिफिकेशन हमारी योग्यता होगी कि हम उसको देख पाएंगे कभी जब हमारे अंदर ऐसी योग्यता आएगी तो कभी हम अध्यात्म जगह जाके फिर प्रभुपाद को भी देख पाएंगे.
That such jiva mukta can be seen or not seen as it chooses.
So, हम यहाँ पे देखते हैं इस नागर कनेक्शन देखते हैं कि जो देखते जो जीवन मुक्त होते हैं वो व्यक्ति दृश्य और अदृश्य होते हैं.
You see the connection between these two pastimes here. Pastimes of Prabhupada leaving his material body and the pastimes of Maharaj described there.
यहाँ पे आप दोनों लीलाओं से कनेक्शन देख पा रहे हैं प्रभुपाद की लीला में और यहाँ पे महाराज देवी की लीला में.
कनेक्शन नो ब्लैंक द कनेक्शन बिटवीन द पास्ट टाइम ऑफ महाराज देवी लिविंग हिज बॉडी एंड बीइंग अवार्डेड ए स्पिरिचुअल बॉडी बाय मर्सी ऑफ द देवास.
यहाँ पर देखते हैं कि जैसे महाराज जिन्हें ने अपना शरीर छोड़ा और उनको आध्यात्मिक शरीर जो देवताओं की प्रार्थना से प्राप्त हुआ.
Of course, Prabhupada, he is present as Nityasiddha. He was not awarded a spiritual body by the mercy of the demigods. He simply reclaimed his original swarup or eternal spiritual form. He didn't have to take any benediction from the demigods for that. But in this case, Maharaj Nimi was awarded the spiritual body by the mercy of the devas.
हम देखते हैं श्री प्रभुपाद की लीला में कि जब श्री प्रभुपाद ने अपना भौतिक शरीर छोड़ा तो उन्होंने अपना आध्यात्मिक शरीर प्राप्त किया लेकिन उनका आध्यात्मिक शरीर इस लीला की जैसा नहीं है. इस लीला में महाराज जी को देवताओं की प्रार्थना से उन्हें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हुआ लेकिन श्री प्रभुपाद ने अपना भौतिक शरीर छोड़ने के बाद उन्हें अपने योग्यता से ही आध्यात्मिक शरीर में प्राप्त हो गए.
So again, Prabhupada says, a devotee being jivan mukta can be seen or not seen as he chooses.
यहाँ पे श्री प्रभुपाद भी लिखते हैं एक भक्त जो जीवन मुक्त है वो अपने इच्छा अनुसार दृश्य या अदृश्य हो सकते हैं.
You see the similarity here?
यहाँ पे सिमिलरिटी देख पा रहे हैं?
The Prabhupada continues, I have stated Bhagavad Gita, Naham, Prakash, Subhashya, Yogamaya, Subhava, Pata. The Supreme Personality of Godhead, Krishna, is not manifest to everyone and anyone. To the common man, he is unseen.
So, jaisa ki Bhagavad Gita mein kaha gaya hai, Naham, Prakash, Subhashya, Yogamaya, Subhava, Pata. Bhagavan Krishna, har kisi ke liye vyakt nahi hai.
Now Prabhupada quotes a verse that he quoted hundreds of times in his lectures, hundreds of times.
So Prabhupada अब एक verse को quote करने के लिए यहाँ पे बताते हैं जो Prabhupada अपने lectures में काफी काफी सौ बार बोला होगा.
अतः श्री कृष्ण नाम आये ना मगर ग्रायाम इन ग्रायाय.
अतः श्री कृष्ण नाम आये ना मगर ग्रायाम इन
Krishna and his name, fame, qualities, and paraphernalia cannot be completely
understood.
Unless one is advanced in spiritual life, Seva Mukhi Ji Jivado, one cannot see Krishna.
जब तक कोई आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ा हुआ ना हो सेवा मुख्य ही जीवाद हो तब तक कृष्ण को देख नहीं सकता.
So by the mercy of Srila Prabhupada, we have deities all over the world, so we can see Krishna.
Srila Prabhupada की कृपा से हमारे पास पांच विग्रह है देश के हर कोने में हम भगवान कृष्ण को देख पाते हैं.
The deity is Krishna himself personally. Not even expansion. Krishna is personally present in the deity.
तो जो अश्विग्रह है वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है. ऐसा नहीं है कि भगवान कृष्ण के अवतार है, वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है.
और सीताराम also
सीताराम भी स्वयं खुद है, अवतार नहीं.
तो इसे वहां पहुंचे फॉर्म ऑफ You know, carbon bubbles on one day, and or made of wood like they were called in Sumatra.
So, this is चाहे वो पत्थर के बने हो, चाहे वो लकड़ी के बने हो, जैसे कि जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मां ये मूर्ति के बहुत ही कहीं ना.
So, for a position to come in man, he made Krishna his own sin.
So, Prabhupada लिखते हैं कि साधारण व्यक्तियों के लिए वो दिखते नहीं है, अदृश्य रहते हैं.
Unless one is advancing spiritual life, say that okay, he is Jivado, why cannot see Krishna?
जब तक कोई आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ा हुआ ना हो तब तक है श्री कृष्ण को देख नहीं सकता.
Therefore, the ability to see Krishna depends on Krishna's mercy.
अतः कृष्ण को देखने की शक्ति उन्हीं की कृपा पर निर्भर रहती है.
So, similarly, the nearby devotee cannot see that the deities are alive.
तो उसी प्रकार ये जो कनिष्ठ अधिकारी होते हैं भी देख नहीं पाते कि जो अर्थ विग्रह है वो जीवित है
वास्तव में. जहां
तक कि वो ये नहीं देख पाते कि जो भगवान है अर्थ विग्रह के फॉर्म में अपना जो एक्सप्रेशन है वो चेंज करते हैं, बदलते
हैं. I was astonished when way back when the famous or infamous disciple or follower of Siddha Prabhupada Kirtananda Swami.
So 10 or 6 years ago, so Prabhupada disciple of Kirtananda Swami.
Way back when he was in good standing, long before Prabhupada's departure.
So Prabhupada ke jaane se pehle, jab wo sahi unka aachar tha, sahi standard follow karte the.
I was looking through his photo album of Sri Sri Radha Ramachandra.
So मैं उनकी जो photo album है उनको देख रहा था, जिनमें उनकी photos थी विनाम राधा विनाम चंद्र की.
Looking at the photos, I could see the photographic evidence that their expressions were changing from day to day. Oh, it's true. I looked at the pictures, and sometimes it didn't even hardly look like the same deity. The expressions changed. The voice. That is say, these are Krishna's.
तो फोटो को देख के मेरे सामने साक्षात प्रत्यक्ष था कि अलग अलग फोटो में जो भगवान के अर्थ विग्रह के जो एक्सप्रेशन थे, जो फेस के एक्सप्रेशन थे, अलग अलग थे. बस आप देख पा रहा कहीं पर ऐसा लगता है सेम डीडीज ही नहीं है, इतने उसके एक्सप्रेशन चेंज हो गए.
So I said at that time to Marshall, I said, it seems to me that this book is photographing evidence that the deities are changing, the expressions are moved from day to day.
तो मैंने तब महाराज को कहा कि ऐसा लगता है इस बुक को देखते हैं कि ये साक्षात उदाहरण है, साक्षात प्रत्यक्ष है कि हम इसे देख सकते हैं कि कैसे जो डीटीज हैं, जो अर्थ विग्रह है वो अपने फेस के एक्सप्रेशन चेंज करते
हैं.
और महाराज ने कहा हाँ सही बात है.
सो यू कैन अंडरस्टैंड द डीटीज सिंपली बाय लुकिंग विद योर फ्लैश आईबॉल एट द फॉर्म. यू कैन अंडरस्टैंड.
तो आप अर्थ विग्रह को नहीं समझ सकते अपने इस चमड़े की आंखों से देखकर, आप नहीं समझ सकते.
Therefore, brother says, unless one has advanced spiritual life, say by Mukhi Jivanado, one cannot see Krishna.
इससे प्रभुपाद लिखते हैं कि जब तक आप भौतिक, जब तक आप आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़े हुए ना हो, सेवो मुखी ही जीवाणु, तब तक आप श्री कृष्ण को नहीं
देखते.
अतः कृष्ण को देखने की शक्ति उन्हीं की कृपा पर निर्भर करती है.
The same privilege of being seen or unseen according to one's own desire was given to Mahakshini.
अपनी इच्छा अनुसार देखे जाने या ना देखे जाने का एक ही विशेष अधिकार महाराज देवी को दिया गया.
Thus they lived in this original spiritual body as an associate of Krishna.
इस प्रकार वे अपने मूल अध्यात्मिक शरीर से भगवान के पार्षद के रूप में रहे रहे.
Any questions, comments?
किसी का कोई प्रश्न या टिप्पणी?
Yes.
Yes. हाजिर साहब छह लोगों से इंस्ट्रक्शन ले रहे हैं और उसके बाद वो कंफ्यूज हो जाता है कि आप पता क्या देखा.
For this reason, must be very, very careful for whom they take exception. They have to be authorized. The first one has to be authorized by the particular or authorized by some authorities who are representing an issue. This is the key. You think, you know, you're talking at the Sunday priest with a guest and you want to get some advice from the guest. Good luck.
तो भारत है अगर हम वास्तव में सीरियस है तो हमें देखना चाहिए हम किससे जो आदेश है वो प्राप्त करें, किससे हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, किसकी बातों को फॉलो कर रहे हैं. और हो सकता है तो ऐसा करना चाहिए कि जब टेम्पल के जो आधार जो टेम्पल में टेम्पल अथॉरिटीज है जिनको ऑथराइज करा है कि जिससे आप शिक्षा दे सकते हैं आप उनसे शिक्षा लीजिए. ऐसा नहीं है कि संडे का ऑफिस में कोई व्यक्ति आ रहा है, कोई गेस्ट है, आप उससे बातचीत करना चाहते हैं, उससे राय लेना चाहते हैं.
This means that if the sister was after money, you see later on also the sister fell down. He fell down. He was underwater. He was doing his meditations. And then he became distracted by seeing some fish engaging sex. Same for sisters, right? No, I got the name wrong. No, that was the other mystic sage. But it happens, the point is we see it happens. In other words, we should see it's not a, they're devoted, that's the point. This person. Otherwise, if the sister was or is his brother so far, and if you're the devotee of the Lord, then his disciple wouldn't even think of a person like you see. You suck on a devotee.
So, my brother, the little person, he is a virtuous movie fit. So, this is my brother, if you money, if you have a special teacher, the diaper, the whole movie, if you have a movie, if you have a kid, the 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 movie, if you have a
Just like in the pastime of Daksha, when they offended Lord Shiva and when his daughter Sati performed the Sati Vrata by mystic power, she burned her body in flames, self-ignited flames. In that pastime, there is Then after that, Lord Shiva became extremely angry.
So we can see that in the past, when we see that, when we do the yajna, and then when the Bhagavan Shiva takes care of the Shiva, after that, when you come here, when we see that the Bhagavan Shiva does not respect you, so he gives you a place, he gives you a place, he gives you a place.
Pull out an error and cause that Yama came out of the fire that took, seized Daksha, put him on the sharp blade and cut his head off. That was his simple reaction for Mahabharata.
So, और आखिर जो है जाकर दक्ष प्रजापति के साथ जब काटता है उसका वध करता है.
Point is that Daksha was surrounded by Brahmanas. They were devotees of Lord Krishna, all of them. Sakama means full of material desire, but devotee, just like them. I mean, in our society, we know there are many average devotees, many material desires, but they're devotees. You can't say they're not devotees just because they have material desires. They want money, they want sex, they want nice car, all these things, but they're devotees. Sakama.
हम देखते हैं कि जो दस प्रजापति है उनके यहाँ पे जो सारे ब्राह्मण थे वो सारे भगवान के भक्त थे, लेकिन वो सारे सकाम भक्त थे, उनकी बहुत सारी इच्छाएं थी. और हम ऐसे अपने सोसाइटी में भी देखते हैं बहुत सारे भक्त देखते हैं लेकिन काफी सारी सकाम इच्छाएं रखते हैं, उनको मनी चाहिए, उनको यौन सुख चाहिए, कोई कोई गालियां चाहिए.
सो डॉक्टर वाज अ डिवोटी बट ही वाज पनिश्ड बिकॉज़ ही made Aparad Mahabharata. But the point is that there were Brahmas, some very highly placed Brahmas were around and were servants in the court of Daksha. And they had to suffer, they sided with Daksha instead of going to Shiva.
So, देखते हैं, एक बहुत ही बात आपको ये है कि जो दस प्रजापति हैं, वो भगवान के भक्त हैं, एक साकार भक्त हैं, और उनके साथ उनके जहाँ यज्ञ हो रहा था वहां पर बहुत सारे ब्राह्मण थे, तो वो भी भगवान के भक्त थे. एक क्योंकि उन्होंने जो दस प्रजापति है उनका साइन दिया था और भगवान शिव की दक्ष ने निंदा करी थी.
Sentence was, why did they side with Daksha instead of knowing that Lord Shiva was such a great Mahajana? They did not know this ability, but they were big, big Brahmins. So how come they side with a materialistic king like Daksha, although he's a devotee, instead of siding with Lord Shiva, who's, you know, not ordinary devotee at all, but is Mahajana, I mean, for all greatest authorities on science of Krishna consciousness in the universe?
जो ब्राह्मण है जबकि वो भगवान के भक्त थे लेकिन फिर भी वो अविद्या से जा रहे थे, इग्नोरेंस में थे. उन्होंने ये देखते हुए कि जो प्रजापति है, दस प्रजापति वो भगवान शिव का वो अपराध कर रहे हैं, भगवान शिव के प्रति अपराध कर रहे हैं, शिव की जो महाजन है दीवार मारने से एक है, तब से उन्होंने दस प्रजापति की साइड ली.
They were on Daksha's payroll. They were big, big Brahmanas, but they were on Daksha's payroll. More or less, of course, not technically salary, but Brahmanas don't work for free, generally, and very culturally, right? They're given these year descriptions, you know, thousands of cows, gems, gold, they were women. So much remuneration is given to Brahmanas. So they don't work for free. I mean, they can't. Were generally kings, especially with generously, so they were on Daksha's payroll. They became compromised. The Sindhu Bushes became compromised. You see?
But ऐसा इसलिए था ब्राह्मणों ने इसलिए उनका साइड लिया था क्योंकि ब्राह्मण यज्ञ करने के लिए उनसे दक्षिणा ले रहे थे. क्योंकि दक्षिणा वो दस प्रजापति से ले रहे थे तो उन्होंने इसलिए दस प्रजापति की तरफ से साइड किया.
स्वामी
महाराज की जय.